चैप्टर 317। अब आगे जिंदल पैलेस में सुनील जैसे ही ये बोलता है कि कहीं उन दोनों माफियाओं ने हमारी राजकुमारियों को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा। सुनील की बात सुनकर आकाश खुद को संभालते हुए बोले, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमारी बेटियों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इतना बोल वे वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में माहिर कॉल कटकर दिशा के करीब जाते हुए बोला, दिव्या बेबी, अगर तुम दिव्या नहीं हो और हमें नहीं जानती तो अभी अभी जो फोन आया था वे किसका था और तुम्हें दिव्या बोल खाने के लिए क्यों बोल रहा था। इतना बोल वे दिशा के चेहरे को अपनी एक उंगली से ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, दिव्या बेबी, अब क्या बहाना बनाओगी, क्योंकि अब बहाना बनाने के लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। माहिर की बात सुनकर दिशा माहिर का हाथ अपने चेहरे से हटा अपना चेहरा फेर लेती है, मगर कुछ बोलती नहीं, क्योंकि अब कहने के लिए या छिपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वहीं अपनी दिव्या बेबी को अपना चेहरा फेरते हुए देख माहिर गुस्से में उसके जबड़े को पकड़ उसके चेहरे को अपनी तरफ कर गुस्से में बोला, दिव्या बेबी, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम अपनी नजरें फेरो। वैसे मेरी रूहानी का भाभी कहाँ है? देखो ना, भाई कितने बेसब्र हो रहे हैं उनके मिलने के लिए। अब चलो जल्दी से रूहानी का भाभी को भी बुला दो, ताकि भाई भी मेरी होने वाली भाभी से मिल सके। इतना बोल वे दिशा के जबड़े को छोड़ देता है। वहीं दिशा जैसे ही माहिर के मुंह से रूही का नाम सुनती है, वैसे ही उसके चेहरे पर और भी ज्यादा डर नजर आने लगता है, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि रूही इन दोनों के सामने आए या इस दलदल में फंसे। उसने भी सोच लिया था कि वे रूही के बारे में इन लोगों को कभी पता नहीं लगने देगी, इसलिए वे माहिर से झूठ बोलते हुए बोली, रूहानी का यहाँ नहीं है, वे कुछ दिनों के लिए कॉलेज की तरफ से अपनी ट्रिप पर गई है, इसलिए तुम लोग उससे नहीं मिल सकते। अब जाओ यहाँ से। अविनाश, जो इतनी देर से शांत बैठा हुआ था, उसके कानों में जैसे ही दिशा की बात पड़ती है
कि वो इतनी दूर आकर और इतना इंतजार करके भी अपनी जान से नहीं मिल सकता, वैसे ही उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है।